हवेली का बड़ा सा डाइनिंग हॉल उस वक्त हल्की पीली रोशनी में नहाया हुआ था। ऊंची छत से लटकता पुराना झूमर धीमी रोशनी बिखेर रहा था, जिसमें दीवारों पर लगे राजस्थानी भित्ति चित्र और ज्यादा गहरे, ज्यादा जीवंत लग रहे थे। हवा में देसी घी, मसालों और गरम रोटियों की मिलीजुली खुशबू थी, ऐसी खुशबू जो सिर्फ घरों में होती है, होटलों में नहीं। लंबी लकड़ी की मेज पर सब अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। सबसे ऊपर रत्ना देवी अपने सधे हुए गरिमामय ठहराव के साथ। उनके दाईं ओर विश्वनाथ बैठा था, सीधे शांत, लेकिन आज उसकी आंखों में वो ठहराव नहीं था जो आम दिनों में होता था। बाईं ओर शकुंतला साड़ी का पल्लू कंधे पर संभाले, हमेशा की तरह सतर्क और अनुशासित। विशाल और आर्यन आमने सामने बैठे थे। विशाल शांत था, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ देख रही थीं। आर्यन बाहर से सामान्य, अंदर से बेचैन, और रम्या सबसे ज्यादा चंचल, अपनी कुर्सी पर आधी टिके आधी हिलती हुई। श्यामली पहले से ही खड़ी थी। उसने साड़ी का पल्लू कमर पर ठीक किया और बिना किसी जल्दबाजी के परोसना शुरू किया। पहले रत्ना देवी, उनकी थाली में दाल बाटी, चूरमा, केर सांगरी की सब्जी और ऊपर से देसी घी की हल्की धार, फिर शकुंतला, फिर विशाल, आर्यन, रम्या, हर किसी के सामने वही सलीका, वही ध्यान। मधु और दो तीन और नौकरानियां पीछे पीछे चल रही थीं। कोई रोटियां दे रहा था, कोई कढ़ाई से सब्जी निकाल रहा था। बर्तनों की हल्की खनक और चम्मचों की आवाज के बीच पूरा हॉल जीवित लग रहा था। आखिर में श्यामली ने अपनी थाली ली। वो विश्वनाथ के सामने बैठी, बस सामने। वो पल छोटा था लेकिन भारी। विश्वनाथ ने नजर उठाई अनजाने में, श्यामली ने भी, आंखें मिली, सिर्फ एक क्षण, लेकिन उसी क्षण में वो ठहराव था जो शब्दों में नहीं आता। श्यामली ने जल्दी से नजर झुका ली और चुपचाप दाल बाटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ने लगी। विश्वनाथ ने भी प्लेट की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजर बार बार ऊपर उठ जाती। उसके सामने बैठी श्यामली, सादी सी साड़ी में, बाल सलीके से जुड़े हुए, चेहरे पर कोई बनावटी भाव नहीं, बस वही शांत उपस्थिति जो कमरे को भर देती है। हर थोड़ी देर में नजरें फिर टकरा जाती और हर बार श्यामली पहले नजर हटा लेती। आर्यन ये सब देख रहा था चुपचाप। उसकी उंगलियां थाली के किनारे जरा सी कस गईं। उसने जबरदस्ती रोटी का टुकड़ा तोड़ा, लेकिन भूख जैसे कहीं खो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी, बिना नाम की, बिना वजह बताई जा सकने वाली। उसने विश्वनाथ को देखा, फिर श्यामली को, फिर से, और उसका जबरा हल्का सा सख्त हो गया। विशाल की नजर ये सब पकड़ चुकी थी। वो कुछ नहीं बोला, बस सोच में पड़ गया। आर्यन ऐसे क्यों देख रहा है? ये जलन, ये तो साधारण नहीं है। उधर रत्ना देवी सब महसूस कर रही थीं। माँ की आंखें होती हैं, देखती कम है, समझ ज्यादा ले लेती हैं। उन्होंने धीरे से चम्मच रखा और दोनों को देखा, विश्वनाथ और श्यामली। क्या बात है बेटा? उनकी आवाज नरम थी लेकिन सीधी। तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? मेज पर हल्की सी खामोशी छा गई। विश्वनाथ चौंक गया। उसने तुरंत नजर उठाई। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। रत्ना देवी ने बात वहीं नहीं छोड़ी, उन्होंने भौं हल्की सी उठाई। तो फिर तुम श्यामली को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या उससे कुछ गलती हो गई है? श्यामली के हाथ एक पल को थम गए। उसने सिर और ज्यादा झुका लिया। विश्वनाथ ने जल्दी से कहा, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, श्यामली से कोई गलती नहीं हुई है। उसकी आवाज में जरूरत से ज्यादा स्पष्टता थी। मेज के दूसरे छोर से रम्या की चंचल आवाज उछली, नानी? सबकी नजर उसकी तरफ गई। मामा मामी है ना ये? वो मासूमियत से बोली। तो क्या हुआ अगर देख रहे हैं? ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। शकुंतला तुरंत बोल पड़ी, रम्या, आवाज में हल्की डांट थी, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। रम्या ने होंठ दबा लिए, लेकिन आंखों में शरारत अब भी थी। रत्ना देवी मुस्कुरा दी। उन्होंने शकुंतला की तरफ देखा, अरे शकुंतला, मेरी बच्ची को मत डांटो। फिर विश्वनाथ और श्यामली की तरफ देखते हुए बोली, वो सही कह रही हैं, मेरे बेटा बहू सच में साथ बहुत अच्छे लगते हैं। श्यामली की उंगलियां साड़ी के पल्लू में उलझ गईं। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर फिर से श्यामली पर चली गई, इस बार ज्यादा ठहरी हुई। आर्यन का दिल जैसे और ज्यादा कस गया। उसने रोटी का आखिरी टुकड़ा तोड़ा बिना स्वाद महसूस किए। उसके भीतर कुछ चल रहा था और उसे खुद नहीं पता था कि क्यों। खाना धीरे धीरे खत्म हुआ। मधु ने आखिरी बार रोटियां पूछी, नौकरानियों ने थालियां सहेजी। झूमर की रोशनी अब और नरम लग रही थी। सब उठने लगे, एक एक करके सब अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गए। आर्यन सबसे पहले उठा, बिना किसी से नजर मिलाए। विशाल उसके पीछे चला, मन में वही सवाल लिए। श्यामली ने थालियां रसोई की ओर बढ़ाई, फिर चुपचाप सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। विश्वनाथ कुछ पल वहीं बैठा रहा, फिर उठा। हॉल अब लगभग खाली था, बस हवा में खाने की खुशबू और कुछ अधूरे एहसास तैर रहे थे, और हवेली के भीतर कुछ सवाल और गहरे हो गए थे। हॉल पूरी तरह खाली हो चुका था। झूमर की रोशनी अब बस दीवारों पर लटके चित्रों और फर्श पर पड़े परछाइयों से बातें कर रही थी। नौकरानियां रसोई में बर्तनों की आखिरी खनक समेट रही थी। बाहर आंगन से रात की ठंडी हवा भीतर आ रही थी, जिसमें केसर और मिट्टी की मिलीजुली खुशबू खुली थी। विश्वनाथ कुछ पल वहीं खड़ा रहा। सीढ़ियों की ओर जाती श्यामले की परछाई अब दिख नहीं रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे अभी भी हवा में थी। विश्वनाथ ने अनजाने में गहरी सांस ली। वही ठहराव, वही उलझन। दूसरी ओर आर्यन अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया। उसने मुट्ठी भींच ली। ये सिर्फ देखना नहीं था, उसके भीतर कुछ टूट सा रहा था और वो कारण ढूंढ नहीं पा रहा था। विशाल ने पीछे से उसे देखा। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। ये जलन है, वो समझ गया, और ये खतरनाक हो सकती है। ऊपर अपने कमरे में जाती श्यामली ने दरवाजा बंद किया और पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। दिल जरा तेज धड़क रहा था। उसने आंखें मूंद ली। विश्वनाथ की वही नजर, वही ठहराव। और हवेली के किसी कोने में रत्ना देवी खिड़की के पास खड़ी अंधेरे को देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। कुछ रिश्ते बिना बोले गहरे हो रहे थे और कुछ बिना वजह टूटने की कगार पर थे।